ये आकाशवाणी है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी लेखी, कांग्रेस पार्टी के टॉम वडक्कन, सीपीआई के विनय विश्वम तथा सीपीआईएम के हन्नान मुल्ला। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद कर रहे हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। लगभग 20 बैठकें होंगी अब से लेकर 11 जनवरी के बीच। कई सारे महत्वपूर्ण बिल विलंबित हैं दोनों में, और सरकार की तरफ से यह बयान किया गया है कि कम से कम 7 बिल हैं राज्यसभा में जिसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, और 16 बिल हैं लोकसभा में जिसके ऊपर वो चाहते हैं कि चर्चा हो और पारित भी हो। इनमें ट्रिपल तलाक जो ऑर्डिनेंस है वो पेंडिंग है, वो चाहते हैं कि इस पे पर कार्रवाई हो और बिल पास हो। ठीक उसी तरह भारतीय मेडिकल काउंसिल पे परिषद पे भी डिस्कशन और बहस हो और साथ में बिल पारित हो। मुद्दे बहुत हैं। आज भी विपक्ष की बैठक हुई दिल्ली में जिसमें तमाम सारे नेता आए और आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव भी होने और संसद का जो शीतकाल सत्र है जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आखिरी वर्किंग सत्र माना जाए, क्योंकि अगला सत्र बजट होगा उसमें कुछ ज्यादा कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती चुनाव से पहले। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से बहस भी हो, और साथ ही साथ विपक्ष के तमाम सारे जो मुद्दे उठाए हैं वो कैसे उस पर आचरण करें।
देखिए, प्राथमिकता यही रहेगी कि ये आखिरी सत्र से ठीक एक पहले पूरा फुल ब्लोन सत्र होगा, और इस सत्र में जितना अधिक से अधिक काम समाप्त किया जाए और जितने भी पेंडिंग बिल लेजिस्लेटिव बिजनेसेस हैं उसको खत्म किया जाए ताकि जिस काम के लिए आए थे वो काम करके गए। ये महत्वपूर्ण संदेश होगा और अधिक से अधिक काम होना चाहिए।
जैसे टॉम आपने सुना विपक्ष की तरफ से कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, कौन से मुद्दे पे आपकी प्राथमिकता रहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
एक मंदिर डेमोक्रेसी का मंदिर, और वहां चर्चा तो स्वाभाविक है। इश्यूज रैलीज में नहीं डिस्कस किया जाता है, इश्यूज सड़कों पर नहीं डिस्कस किया जाता है, इश्यूज पार्लियामेंट में। और मैं समझता हूं कि एक कंसेंसस इमर्ज हो, वो सब बिल लाए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिससे आप देश का जो डे टू डे अफेयर जो है उसको आप स्पीड अप करें। इस गवर्नमेंट के पास अभी 6-7 महीने हैं इलेक्शन से पहले, तो कुछ ऐसे बिल्स हैं जो ला सकते हैं और ऑपोजिशन इस पर कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं करते, लेकिन डिस्कशन हो तो अच्छा रहेगा। अब जैसे डैम सेफ्टी बिल है, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल है, इंडियन स्टैम्प अमेंडमेंट बिल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी पर एक बिल है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन बिल है, तो ऐसे बहुत बिल है जिस पर डिस्कशन और दोनों तरफ से व्यूज लेकर इसको जितना जल्दी पास करें तो ये हो सकता है कि इन 5 साल में कुछ तो हुआ। लॉ मेकर्स ने एक्सचेकर का पैसे सही इस्तेमाल किया और एक डिस्कशन हुआ, और कानून बनाने का जो लॉ मेकर का रोल है वो स्थापित होगा। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को और उसके जो एलाइज हैं उनको ये स्पष्ट करना होगा कुछ इश्यूज पर जो हम रेज करेंगे, जिसमें वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है जो हमारे प्रेसिडेंट ने श्री राहुल जी ने ये इश्यू मुख्यमंत्री पंजाब को लिखा है कि भई ये रिजर्वेशन होना चाहिए और रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, और हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में भी ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, ओडिशा में भी पास हुआ है। अगर ये ट्रेडिशन फॉलो हो तो हम समझते हैं कि ये बिल पास होगा और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन एज अ लॉ मेकर मिल जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि देखिए रैली में कुछ बोलते हो आप और पार्लियामेंट में आपका हरकत कुछ और होता है, तो इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा, देशवासियों को बताना होगा कि क्या उनका तरीका क्या अपनाएंगे और क्या पोजीशंस लेंगे। एक दूसरा, किसानों का हालत आप जानते हैं इस देश में। मेरे ख्याल से दिल्ली में इतना बड़ा रैली आपने कभी देखा भी नहीं होगा, किसानों ने आकर दिल्ली में प्रदर्शन किया और एक तरीके का ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया जो एक प्राइवेट बिल के बेसिस पर सबमिट होगा। तो प्रयास तो किसानों की तरफ से बहुत कुछ हुआ है, आपने बड़े वादे किए कि भाई हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। एमएसपी की बात किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट को आपने एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो तो एक जगह। इकोनॉमिक सिचुएशन आप देखिए देश का क्या हालत है। जीडीपी को आपने फज करने कोशिश किया और पुराने जो यूपीए सरकार का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको भी फज किया कि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि भारत की तरफ शक से देखने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स को आपने डिस्टर्ब किया। ये कोई तरीका नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपको काम करना है। आपने कुछ बिल्स ऐसे लाए हैं, आधार बिल, उसको फाइनेंस बिल बनाकर आपने मनी बिल बनाकर ले आया। देखिए सरकार चलाना और आपका जो जुमलाबाजी है ये चल नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि देशवासियों को जाते जाते ये बताइए कि आपने किया क्या इन 5 सालों में।
मौला साहब आपका तो काफी लंबा अनुभव रहा संसद में और ऐसे में जबकि विपक्ष के सामने ये आखिरी मौका है एक तरह से कहिए, क्योंकि सरकार को हमेशा कोशिश रहती है कि कटघरे में खड़ा करे, उनसे जवाबदेही रखे, कई सारे सवाल पूछती है सरकार से। तो एक तो सरकार की तरफ से प्राथमिकता है कि कुछ बिल पास हो जो कि संसदीय कार्य मंत्री बोली चुके हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे बिल है जिसमें एक आम राय बनी हुई है कि इन बिलों को करना चाहिए देश हित में, लोगों के हित में। इन दोनों के बीच जो मुद्दे हैं जैसे कांग्रेस की तरफ से उठाया, आपकी तरफ से कौन से मुद्दे हैं और दोनों के बीच में राय कैसे निकलती आगे?
पहले जो बात है बिल के बारे में, हमारा वामपंथी पार्टियों को साफ नजरिया है, राष्ट्रीय हित के लिए जो बिल है वो बिल को सरकार बैठ के सहमति बना के पास करे। 20 सेशन में 4-5 बिल ही पास हो सकता, ये 23 बिल ये रखा ही है, इम्प्रैक्टिकल है, हो नहीं सकता। तो इसलिए जो बिल पास हो सकता, जैसा बिल आप 3-4 मिनट मेडिकल काउंसिल है और मोटर व्हीकल्स है, बोला टॉम भाई बोला, ये 2 बिल है, ऐसा 5-6 बिल को आइडेंटिफाई करे और जो बहुत दिन से पड़े पेंडिंग है वीमेन रिजर्वेशन बिल, इसको भी लाना चाहिए। ये सब बिल लाके इसको पास करना चाहिए। सरकार इंटेंशन रहे तो बिल पास करेगा और कोई दूसरे इंटेंशन रहे तो 3 तलाक और वो इस सब में जाएगा तो जिसमें जो सहमति है वो बिगड़ जाता है। वो सहमति चाहे तो सहमति के आधार पर कुछ अच्छा बिल पास हो सकता, हम लोग सहयोग करेंगे, ऐसा करते हैं। मगर जो इश्यूज है ये सरकार 4-5 महीना बाकी है, तो ये 4-5 महीना 5 साल में क्या किया इसको तो हिसाब निकास होना चाहिए, मगर उतना समय भी नहीं है। और पिछले भी 3-4 महीना में सरकार का जो रवैया है वो पूरा देश के जनता के मन में शंका पैदा किया। जैसा आज भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, बोलता है हम खाने नहीं देंगे और नहीं खाएंगे, ये उल्टा हो गया। आप नीति बदल गया, आप अभी खाने देंगे बाद में उससे खाएंगे, ये नीति चालू हो गया। 30,000 करोड़ सुविधा दे दिया कोई एक कंपनी को और बाद में इलेक्शन बॉन्ड कर दिया, पार्टी को चंदा नहीं दे पाएंगे, बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। तो कौन बॉन्ड खरीदेगा? जिसको 30,000 करोड़ मिला वही 10,000 करोड़ का बॉन्ड खरीद करेंगे। इलेक्ट्रल प्रोसेस को गड़बड़ कर दिया। तो इसलिए हमारा कहना है राफेल के बारे में चर्चा होना, जेपीसी होने का जो मांग है इसको स्वीकार करे तो पार्लियामेंट स्मूथली चलेगा, और जो मुख्य बात नहीं मानेगा सरकार तो फिर विरोधी से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन, संविधान जो इंस्टीट्यूशन तय किया था सारे एक के बाद एक बर्बाद किया। हमारा प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, नीति आयोग हुआ, इसका भूमिका देख रहे हैं क्या चल रहा है, सीबीआई पर हमला, उसके बाद रिजर्व बैंक पर हमला, उसके बाद यूजीसी पर हमला, इंस्टीट्यूशन पर हमला, सारे इंस्टीट्यूशन का एक के बाद एक बर्बाद किया जा रहा है। ये हमारा 70 साल में तील तील करके बनाया था, ये सब तोड़ रहा है। तो ये भी सवाल है, ये चर्चा होना चाहिए, इसको बचाना देश के लिए जरूरी है। फिर जो है प्राइस राइज अनप्रेसिडेंटेड, आम लोग के लिए जीना मुश्किल हो रहा है, सब चीजों का दाम बढ़ रहा है और बेरोजगारी तो एकदम आसमान छू रहा है। सरकार बेरोजगारी का तथ्य निकालना बंद कर दिया, कितना बेरोजगार है पहले हर सरकार का हिसाब होता था साल में, अभी वो हिसाब रखना ही बंद कर दिया कि लोग जान ना पाए कितना बेरोजगार है। मगर ये भी बहुत भयानक समस्या है, इसको भी चर्चा होना चाहिए। साथ साथ हम जो बोलते हैं आज किसान का, जैसा भाई साहब ने बताया, आज किसान पिछले 2 साल से काफी आंदोलन में रहे हैं, किसान 2 बिल बना के पार्लियामेंट के सामने पेश भी किया है। तो किसान का जो समस्या है खासतौर पर उसका जो 2/3 कॉस्ट प्लस 50% प्राइस हो, लोनेबर हो, बीमा का ठीक ढंग से देना हो, खुदकुशी घटाने का सवाल हो, ये सब जो सवाल है किसानों का, इसको भी चर्चा करके जो कानूनी व्यवस्था लेना पड़ेगा। सिर्फ मुंह जवानी वादा से नहीं हो रहा है, किसान बहुत दुखी है, इसलिए ये भी चर्चा होनी चाहिए। तो ये जो सारे सवाल है मैं बताया, तो ये सवाल को चर्चा करे और चर्चा सरकार चर्चा में राजी हो जाएगा, अपोजिशन कुछ बिल पे राजी हो जाएगा तो दोनों में मिलके कोई रास्ता निकल सकता। मगर इसमें जिम्मेदारी जरूर सरकार का है, सरकार का हाउस चलाने का जिम्मेदारी मुख्य उसके हैं, वो कैसे व्यवहार करेंगे उसके ऊपर इस सत्र कैसे चलेगा वो तय होगा।
मीनाक्षी जी, जैसे आपने सुना कि विपक्ष की तरफ से यही मांग है कि जो चर्चा होनी चाहिए वो सक्रिय तो रहेगी, सार्थक रहे, साथ ही साथ एक एजेंडा बने कि जिसमें प्रायोरिटी बन जाए लिस्ट बिल्स की, ताकि विपक्ष की तरफ से ये है कि मुद्दे तो चलते रहेंगे क्योंकि सरकार के आखिरी 4-5 महीने हैं जिसमें सरकार का लेखा जोखा भी लोग चाहेंगे कि, और साथ ही साथ जो बिल है, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से जो पहल हो रही है कि 4-5 मुख्य बिल जो हर हालत में निकलने चाहिए, जो कि जनहित में हो, लोक कल्याणकारी हो, उस पर इस तरह की बातचीत होने की संभावना?
अगर सबके पास सद्बुद्धि रहे तो क्यों नहीं है, वो तो होना चाहिए और वो तो पूरे 5 साल भी होना चाहिए था, मगर देखने में कथनी और करनी का अंतर आपको दिखाई देता है हर बार। तो मेरी भी यही प्रार्थना है सबसे कि जो होने वाले काम है वो फटाफट निपटा देना चाहिए, क्योंकि इस 5 साल की जो जिम्मेवारी थी वो हम सब लोगों का, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, राज्यसभा छोड़ दीजिए लेकिन बाकी हम सब लोग का जो जिम्मेवारी है वो 5 साल के लिए अपना काम खत्म करके हम लोग उठे तो अच्छा है और वो सबका उसमें फायदा है, देश का फायदा है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मगर मौला साहब बार बार किसान 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 कह रहे हैं, तो मुझे किसान के विषय में जो कहना है वो यही कहना है कि किसान के लिए 2014 से पहले MSP नहीं था तब कोई नहीं बोल रहा है, उसके यहाँ यूरिया नहीं पहुंचती थी तब कोई किसान पे कोई एग्रीकल्चरल क्राइसिस नहीं था, इंश्योरेंस की टर्म्स बिल्कुल गलत थी तब कोई क्राइसिस नहीं था। अब वो सब काम हो चुके हैं, इरिगेबल लैंड 4% थी हिंदुस्तान के अंदर, अभी उसको बढ़ाया गया है और उस पर काम हुआ है, और बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन के जो मुद्दे हैं वो राज्य सरकारों के होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आप केंद्र सरकार द्वारा नहीं करवा सकते, केंद्र सरकार जो MSP तय करती है या इरिगेशन की पॉलिसी बनाती है या बाकी तमाम पॉलिसी होती है उनके अंदर स्टेट का एक अंश होता है और वो स्टेट के जो अंश है वो अपने हिस्से का काम ना करें। 32% बजट का हिस्सा मिलता था तब तकलीफ नहीं थी, अब 42% मिलता है तो तकलीफ है। तो लगातार ऐसा देखने को मिलता है कि जो गैप्स हैं वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, गवर्नेंस से हटकर मुद्दों से भटककर हम लोग पॉलिटिसाइजेशन पर उतर आते हैं और किसान का मुद्दा भी पॉलिटिसाइजेशन एक भड़काऊ खड़ा करने का मुझे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जितना काम इस सरकार ने किया है ई मंडी से लेकर बाकी तमाम चीजों पे, और गैप जो है वो गैप्स आपको समझना पड़ेगा, इतने बड़े देश के अंदर राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारियां हैं और राज्य सरकारें जो है वो नई तरबीब से काम करें, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोग पार्टी के लेवल पे काम कर सकते हैं क्योंकि हम सब लोग पार्टी के भी लोग हैं और हम सबकी कहीं ना कहीं सरकारें चल रही हैं, तो अपने राज्य के अंदर अगर हम उन सबको अनुग्रहित करवा दें तो काम ठीक होगा।
विष्णु साहब, आपने सुना CPI की तरफ से आपके कोई ऐसे मुद्दे हैं, वाम की तरफ से भी हैं कुछ, हनन साहब ने बताया, और विपक्ष की तरफ से जैसे कांग्रेस की तरफ से टॉम वर्कन जी ने भी बताया, आपके कुछ विशेष मुद्दे जो आप चाहते हैं कि संसद के समक्ष रखें और उस पर बहस हो?
राज्य का सरकार का लास्ट लाभ है, 5 साल के पीछे मोदी जी का सरकार हमारा लोगों के एश्योर करे अच्छे दिन का काम है, वह अच्छे दिन इस देश का रिच अमीर लोगों को अच्छे दिन है, अंबानी अदानी को अच्छे दिन है, द पुअर इन द कंट्री दे आर एट द लूसिंग एंड्स, किसानों और खेत मजदूर सबसे बड़ा क्राइसिस फेस करता है, आत्महत्या का परंपरा इस देश में टेकिंग प्लेस एवरी डे, द गवर्नमेंट क्लेम्स ऑफ ए लॉट ऑफ गुड स्टेप्स taken for the peasants and the laborers. The only way that they can tell is about the Swaminathan Commission. For propaganda sake, prajaran karne ke liye Swaminathan wahi log bolte hai. But Swaminathan report ka letter and spirit, ka soul, atma, chot kare.
ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। टॉम, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने कुछ दे रखे थे सामने, साथ ही साथ कई सारे हैं जैसे मुल्ला साहब ने जिक्र किया कि संस्थाओं को लेकर कुछ आपत्ति है, आपने भी उसका जिक्र किया आपने, तो इसके पर उल्लेख करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ जैसे मैंने मीनाक्षी जी से भी पूछा कि कई सारे बिल हैं जिसके अगर आम राय बन जाती है तो जो कि लोक हित में है और जनहित में है, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसको आगे निकालने से?
देखिए, जैसे मैंने उस टाइम भी कहा कि अगर सरकार कुछ बिल्स पर उनकी बिजनेस एडवाइजरी लेवल पर अगर आप लोग डिस्कस करें तो उससे ये होगा कि एक कंसेंसस इमर्ज हो सकता है, लिमिटेड टाइम है आपके पास। इन हालातों में कुछ बिल्स ऐसे हैं जो देश हित में डिस्कशन के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहां तक इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, ये चार्ज हम आज से नहीं डे वन से कह रहे हैं कि देखिए प्लानिंग कमीशन से शुरू हुआ, प्लानिंग कमीशन को आपने मैल फंक्शनिंग एक सिस्टम में डाला और उसको एक नया नाम दिया, और उनका काम क्या रहा जो आपके सामने है, इन्होंने जो बातें कहा और किया वो आप जानते हैं। उसके बाद आप चलिए सीबीआई की तरफ, सीबीआई में क्या हुआ, रात ही रात तबादला, और किसका तबादला और क्यों किया, पब्लिक में बोलिए, बताइए किस लिए हुआ। ये आप बताएंगे कि दोनों लड़ रहे थे, जनता जा चुके हैं। अब ये कहानियां आप कहना कि भाई फलाना और इसके बीच में लड़ाई है इसलिए ये सब हुआ, ये लोग खरीद नहीं रहे हैं ये कहानियां। आज की तारीख पर जनता जाग चुका है। इकोनॉमिक इश्यूज पर रिजर्व बैंक का क्या हालत है, आर्टिकल 7 को आप इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं, आप जवाब देते हैं कि क्यों नहीं करें कि आरबीआई मैल फंक्शनिंग था। 70 साल से ये मैल फंक्शनिंग था क्या? वाजपेयी जी भी थे, सरकार गवर्नमेंट चलाया था, लेकिन जब तो आपने आरबीआई के बारे में कुछ नहीं बोला। अब जब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन और इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं खतरे में हैं, डिमोनेटाइजेशन से जो आपको करना था आपने कर लिया इकोनॉमी के साथ, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन आप जानते ही हैं क्या हालात है, नौकरियां देने के बदले आप नौकरियां छीन रहे हैं क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर को आपने डिमोलिश कर दिया। इन हालातों में सोचने वाली बात है, अभी टाइम है थोड़ा आपके पास, कुछ ऐसा करिए जिससे लोग आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है समझ पाएंगे। मैं आपके इंटरेस्ट में बोल रहा हूं कि ऐसा ना हो कि लोग आपको भूल जाएं और वो इतिहास में ऐसा नाम चढ़े कि भाई ये सरकार ने क्या किया प्रश्न चिन्ह ना लगे।
मीनाक्षी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आगे चर्चा आगे बढ़ाऊं।
नहीं, मैं कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब थोड़ा तथ्य जो है हकीकत से अलग है, और हकीकत में ठीक इसका उल्टा हुआ है। हकीकत में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कितनी स्मूथली से हुआ है वो पूरा देश देखता है, जिसकी वजह से आपकी टैक्स की अर्निंग बढ़ी है। आपको जब इतने गरीब देश में इतने लोगों का पेट पालना है, उनके लिए शौचालय बनवाने हैं, सड़कें बनानी है, बिजली देनी है, जो 70 साल की बुनियादी अधिकार उनको नहीं मिल पाए, वो अंबानी और अडानी को नहीं मिले हैं। शौचालय उनके घर में तो पहले भी था, वो तो कांग्रेस के टाइम में बन चुके, वो सबसे अमीर आदमी कांग्रेस के टाइम में बने, बीजेपी के टाइम में नहीं बने। लेकिन उसके बावजूद जितने आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के अंदर 70 साल की आजादी के बाद केवल 12.5 करोड़ खाते थे 130 करोड़ के देश में, और 32 करोड़ खाते खुले हैं 4 महीने के मात्र समय में, और जितनी भी सब्सिडी तमाम तरीके की योजनाएं हैं उन खातों के माध्यम से उस गरीब के लिए मिल रही हैं जिसके बारे में सब बात करते हैं मगर काम नहीं करते। और उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो आपकी कवरेज थी वो आज 90% तक पहुंच चुकी है, शौचालयों की कवरेज, स्वच्छता की कवरेज, इंद्रधनुष के माध्यम से आपकी वैक्सीनेशन की कवरेज, जो आपके सबसे गरीब तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी जो सेवा करते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स, उसके बारे में कहानी करते रहे 70 साल, काम क्या किया। तो ये सब बातों पर तो मैं चाहती हूं कि बहस हो, क्योंकि ये सरकार किसकी है और ये सरकार गरीब किसान मजदूर को समर्पित सरकार है, क्योंकि इस सरकार ने पिछले 4.5 साल में गरीब मजदूर किसान के लिए जितना काम किया शायद ही 5 साल की अवधि में किसी भी सरकार ने किया, और वो सब आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करने वाले। और जहां तक बात है अच्छे दिन की, देखिए जनाब, हमने इस देश के गरीब के लिए अच्छे दिन की कामना की थी, और उसके यहाँ अगर बिजली का बल्ब लग गया, उसके गांव में बिजली आ गई, उसके यहाँ शौचालय बन गया, उसकी बेटी के विवाह में मदद हो गई, उसके यहाँ पर अनाज की मंडी, उसका सामान सीधा पहुंच गया, उसका नया खाता खुल गया, उसको मुद्रा बैंक का लोन मिल गया, तो उसके अच्छे दिन आ गए हैं। बाकी बेईमान लोगों के अच्छे दिन की हमने कामना ही नहीं की थी, बाकी जिसने जो करना है वो होगा ना।
मौला साहब, आपके साथी ने कहा कि आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि मीनाक्षी जी ने अपनी बात कही कि गरीब के लिए ये सरकार बिल्कुल कटिबद्ध थी, कई सारे कल्याणकारी योजना चली और चल भी रही हैं, काफी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कही, लेकिन आपके साथी का मानना था कि गरीब पिस गया।
नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, हमारा आज समझो किसान के लिए बोल रहे हैं बहुत अच्छा, 42% किसान जो प्राइवेट मनी लेंडर का पाया जाता है, इंस्टीट्यूशन और कोई सुविधा नहीं है। 41% किसान समीक्षा में बोला हमको दूसरे नौकरी मिला था हम खेती छोड़ देंगे। आज खेती घाटे का सौदा हो गया, जितना भी बोलो तो आज जो है मनरेगा, आज गांव में जो बेरोजगार, एक तो खेत मजदूर था, अभी उसके साथ फिर ग्रामीण एक मजदूर उभर के आया है, फिर माइग्रेशन कर रहे हैं शहर में किसी तरह रोटी के कब्जा में। तो गरीबी के हाल में जितना प्रचार है वास्तव में ऐसा बात नहीं है। तो इस जो सच्चाई जो है, उसके बाद जो डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन में 80% स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर का फैक्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो गया, ऑर्डर बंद हो गया। किसान अपना खाद खरीद नहीं पाया, मजदूर का वेज देने नहीं पाया, और उसके बाद बोल रहे सुविधा कर दिया। आज जब एसएमएस की जब खत्म कर दिया छोटा उद्योग को, अभी वो खतरे में पड़ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद में। अभी रिजर्व बैंक का पैसा उभार के उधार लेके उधार के दे दो, कहां से रिजर्व बैंक का पैसा लेके उसको देने का जबरदस्ती कर रहे। तो ये जो है ना पॉलिसी में जो अंडरस्टैंडिंग है, ये पॉलिसी का अंडरस्टैंडिंग में जो वर्ल्ड बैंक का जो निर्देश से 100% निर्देश को कार्यान्वित किया जा रहा है। आप इंडियन इंटरेस्ट जितना है ना देख के वर्ल्ड बैंक का जो गाइड फॉर्मूला है, जो प्रेस्क्रिप्शन है, वो कांग्रेस ने शुरू किया था। ये तो एकदम एग्रेसिवली वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला को लागू कर रहा है, उसके नतीजा में लोअर लेवल लोग का भला नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक अमेरिका गरीब के लिए नहीं भलाई कर सकता, और उसको निर्देश जब चालू कर रहा है उसका नतीजा हर जिंदगी का, आज बेरोजगारी बोलो, आज सरकार चार साल से बेरोजगारी आंकड़े निकालना बंद कर दिया। ये चालाकी है, हर साल में आंकड़े होता था कितना, आज आप बोल नहीं सकता भाई, सरकारी आंकड़े नहीं मिलता कितना बेरोजगार है। जीडीपी जो नापने का हिसाब है, बड़े बड़े लोग आज उसका जो सरकार का चीफ एडवाइजर था इकोनॉमिक, वो आज बोल रहा है हिसाब करने का जो तरीका है ये तरीका बदल दिया सरकार, इसको तोड़ मोड़ करके अपना कामयाबी को दिखाने के लिए। तो इसके लिए सही विचार होना चाहिए, और संसद में सही चर्चा हो सारे सवाल को, सरकार क्लैरिफाई करे तो अच्छा बात है, लोग समझेगा। मगर ये सब सवाल तो जनता जनमानस में है, सिर्फ मन का बात में ये एक तरफा बात से लोग का बात पहुंच नहीं रहा है। आप आमना सामने बात करो और सब सवाल का जवाब दो, बहुत कुछ साफ हो जाएगा।
तो कई सारे, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, कई सारे बिल हैं लंबित हैं, कई सारे हैं। एक बिल का जिक्र आपने किया था महिला आरक्षण को लेकर, और आपने बात कही थी, तो थोड़ा संक्षेप में मैं मीनाक्षी से जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नजरिया है, क्योंकि चर्चा में ये बात बार बार ही उठ रही है कि महिला आरक्षण बिल को कैसे आगे किया जाए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला आरक्षण बिल जो है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी पार्टी में तो एक महिलाओं का स्पेसिफिक काडर है, और 33% महिलाओं को संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन दिया हुआ है पार्टी काडर के भीतर, कि हर यूनिट के अंदर 33% महिलाएं हैं। आप बता दीजिए देश की कौन सी पार्टी ने लागू किया है, और उसके लिए आपको कोई कानून बदलने की जरूरत नहीं, अपना इंटरनल संविधान बदलने की जरूरत है अगर संविधान है तो, नहीं तो रेजोल्यूशन पास करने से भी काम चल जाएगा, बावजूद उसके किसी पार्टी ने नहीं किया। बाहर आके ड्रामा करने से क्या होता है, महिला रिजर्वेशन, पहले अपनी पार्टी के अंदर तो महिलाओं की स्थिति को ठीक करें, वो कुछ करना नहीं। और उसी प्रकार से जो 33% महिलाओं का विद इन पार्टी रिजर्वेशन है, उसका असर ये है कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को कहीं ना कहीं संगठन के रूप में खड़ा होने का मौका मिलता है, अगर इलेक्शन में नहीं तो संगठन के अंदर काम करने का मौका भी मिलता है। उसी प्रकार से जब पहले रिजर्वेशन बिल की बात आई थी 2008-9-10 के बीच में, तो गुजरात सरकार इकलौती ऐसी सरकार थी जिसने अपनी विधानसभा के अंदर ये बिल को पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था, और उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उसने उस पर राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उसको डिफंक कर दिया। अभी ये सब बातें बोलने से क्या फायदा, करना कथनी करनी में अंतर है जी, और करना किसी ने नहीं है, ये सब नाटक नौटंकी से बात नहीं चलेगी। अगर दुनिया समझदार है तो दुनिया इसलिए भी समझदार है कि हम लोगों को काबिल लोग चाहिए, और काबिल लोग चाहिए जो संसद में बैठ के चलाएं। और मैं एक उसका उदाहरण ये देती हूँ कि आप ऐसा क्यों समझते हैं कि महिलाएं पुरुषों के खिलाफ जीत नहीं सकती, पुरुषों के खिलाफ भी जीतेंगी महिलाएं, तो अगर काबिल महिलाओं को आप खड़ा करें, महिलाओं को काबिलियत बनाने का और टिकट देने की व्यवस्था आप करें। तो मेरा उसमें शुरू से अब तक यही आग्रह रहा है कि जो फॉर्मुलेशन आप कर रहे हैं वो फॉर्मुलेशन हो जाए। मैं तो कहती हूँ चलो ऐसे कर दो या वैसे कर दो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय, पार्टी की राय ये नहीं है क्योंकि पार्टी ने उसी फॉर्मूला को अडॉप्ट किया, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि हर पार्टी 33% टिकट महिलाओं को दे दे, और 33% टिकट जब देंगे तो हर पार्टी को काबिल महिलाओं को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा, वो किसी और तरीके से महिलाओं को टिकट नहीं बांटेंगे। एक ही जगह पर अगर मैं खड़ी होती हूँ, मेरे खिलाफ कोई और महिला को खड़ा करें, और फिर 3-4 पार्टी का वही महिला खड़ा हो, तो 3-4 में से एक ही जीत के आएगी। और महिलाएं अगर विभिन्न पार्टी की खड़ी होती हैं, विभिन्न जगह पे खड़ी होती हैं, महिला पुरुष के बीच में भी अगर द्वंद्व होता है तो आपको लगेगा कि और जगहों पे भी और पार्टी की महिला जीत के आएंगी, तो महिला पुरुषों के खिलाफ नहीं जीत सकती, ऐसा नहीं है। तो चाहे वो पॉलिट ब्यूरो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व है, चाहे वो अन्य पार्टी है, सबकी कथनी और करनी का अंतर है, और यही कारण है कि विद इन पार्टी पोजिशन रिजर्वेशन इन लोगों ने नहीं दिया।
विष्णु साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे?
बहुत सामर्थ्य से मीनाक्षी जी द रियल प्रॉब्लम से डाइवर्ट करता है। प्रॉब्लम यह है कि संसद में महिलाओं का आरक्षण का बात है, उसी से हमारा रिस्पेक्टफुल लीडर ऑफ द बीजेपी स्पीकिंग अबाउट रिजर्वेशन इनसाइड द पार्टी, रिजर्वेशन अमंगस्ट द कैंडिडेटचर, यह है प्रॉब्लम। बहुत सालों से सारे देश का पॉलिटिकल सर्कलों में यह इश्यू है, महिलाओं का आरक्षण संसद में, संसद का बाहर नहीं। इस इश्यू पर रूलिंग पार्टी हैज नॉट डेफिनेट आंसर, इसलिए बहुत सामर्थ्य से, आई शुड टेल इट, बहुत सामर्थ्य से इन ए वेरी वाइज मैनर शी वॉज ट्राइंग टू डाइवर्ट द इश्यू इन सच ए वे दैट द बीजेपी इज डूइंग सम वंडर्स फॉर द वुमेन। इट इज नॉट अ वंडर, इट इज जस्ट एन आई वॉश। हाउ टू डू एन आई वॉश वी कैन लर्न फ्रॉम मीनाक्षी जी।
I find it very sad because no, my friend should understand the subject in greater detail. It should be understood. नहीं, एक विषय को गहराई से समझना आवश्यक है और विषय को गहराई से समझना इसलिए आवश्यक है कि चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो जर्नलिज्म है, चाहे वो सिविल सर्विसेज है, चाहे वो अन्य स्थान है, आपके पास जब तक महिलाओं का काडर इकट्ठा नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसकी फाइनेंशियल वेयरविदॉल नहीं है, उसको चुनाव लड़ना नहीं आता, आप उसको आरक्षण देके चुनाव लड़वाएंगे क्या, ताकि वो आप ही की कठपुतली बन के घूमती रहे? या आपको ऐसी काबिल महिलाएं चाहिए जो आप जैसों को धता बताएं? और वो तभी मुमकिन है जब काबिलियत के नाम पर टिकट वितरण हो और काबिल महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जाए। समस्या को गहराई से ना समझकर कुछ भी बुन देना, ये मैं पॉलिट ब्यूरो की बात करूंगी तो जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि वहां आपको कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी चाहिए आप पार्टी के अंदर कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं किया, उसका जवाब मैं आपसे मांगूंगी नहीं। मैं मांगूंगी कि रिजर्वेशन का ड्रामा आप पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, आप सरकार चला रहे हैं केरल के अंदर, वहां पे आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में क्यों महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, उसके लिए आपको केंद्र के आरक्षण की आवश्यकता है, आप कर सकते हैं, नहीं किया। तो ये सब झूठ और सच का अंतर जो है मुझे लगता है सबको समझने की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता इसलिए है कि ये एक बहुत गहरा विषय है और गहराई में अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि रिजर्वेशन के नाम पर आई वॉश नहीं होना चाहिए।
बाकी ये बात है, महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहस तो चलती रहती है और इसपे राय बना के चाहे वो कानूनी जामा पहनाएं या उसको किसी और तौर पे आगे बढ़ाएं, ये एक आपसी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संसद में आखिरी सत्र है, कई सारे जैसे मैंने भी कहा, चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक बिल है और सरोगेसी बिल है, वहां ट्रांसपोर्ट में एक अमेंडमेंट, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल है, कई सारे कल्याणकारी हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे जो काफी दिन से विलंबित हैं इनको अब निकालने का समय है और एक आम राय बना के, क्योंकि इसके बाद अगला सत्र तो सिर्फ एक औपचारिक हो जाएगा जिसमें आप सिर्फ वोटर अकाउंट ही ला पाएंगे बजट का?
देखिए, समय का जो बात है वो सही है, तो आपको एक लिमिटेड लेवल पर 5-6 बिल्स जो है एक कंसेंसस लाकर इनको आप लाएं और बातचीत के, थोड़ा ओवरनाइट वर्क होना पड़ेगा, लॉ मेकर्स को काम करना तो पड़ेगा ही, ये नहीं कि आप 6 बजे घर चले जाएं, क्योंकि आप लोग इलेक्शंस फेस करेंगे और आने वाले दिन में लोग ये पूछेंगे कि भाई आप लॉ मेकर्स हैं, क्या किया आपने। तो इन हालातों में मेरे ख्याल से हर पार्टी का इंटरेस्ट में ये होगा कि बिल्स मैक्सिमम जितना पास हो सकता है वो कंसेंसस से पास हो, और लॉ मेकर का जॉब ये है पार्लियामेंट में। रैलीज में आप कुछ भी बोलिए कि हमने ये किया वो किया, लोग पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी जो है आपको हिसाब देना पड़े। सच्चाई तो ये है कि आपको अपना खाता और अकाउंट सब कुछ खोलना पड़ेगा और लोगों को बताना होगा कि हमने क्या किया, और कोशिश ये होगा कि हम ये करने वाले भी हैं।
लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिरी सत्र जिसमें लेजिस्लेटिव एजेंडा हो उसमें सक्रिय हो, काम हो और कल्याणकारी और जनहित के बिल पारित हो। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी लेखी, कांग्रेस पार्टी के टॉम वडक्कन, सीपीआई के विनय विश्वम तथा सीपीआईएम के हन्नान मुल्ला। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है AIR NSDTalks@gmail.com।